नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है और क्योंकि वह प्रेम करता है उसकी ताड़ना करके उसे अनुशासन सिखाता है। यह परमेश्वर के लिए खुशी की बात नहीं है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिसे आपने इस समय को दिया है ताकि हर एक आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सके। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरी संगति से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि वे आपकी महान सच्चाइयों को देखकर आपको स्वीकार करने पाएं। पिताजी, आज के वचन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय को निकाल लीजिए, क्योंकि हमने इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 से 10 पद का अध्ययन पिछले अध्ययन में किया था। आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 11 पद को पढ़िए। लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका अनुशासन करता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस अध्याय में 4 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। पहला है, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम ताड़ना को गलत समझते हैं। आप उसको हल्की बात समझकर उसका अर्थ न समझें। आप कहते हैं, मैं कष्ट उठा रहा हूं। सब कष्ट उठाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपका स्वर्गीय पिता आपको अनुशासन सिखा रहा है और आप उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। यदि आप विश्वासी हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे, परंतु कई बार विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। दूसरे कारण को हम लोग देखेंगे, जब वह तुझे घुड़ के तो साहस न छोड़। यह बच्चे के रोने की सी प्रतिक्रिया है। वे रुष्ट होकर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मसीही जीवन बेकार है। मैंने परमेश्वर की सेवा की है और अब वह मेरे ही साथ ऐसा कर रहा है। कहने का अर्थ है कि उनका साहस टूट जाता है। अनेक विश्वासियों की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं बहुत बीमार था, तब संपूर्ण विश्व से हजारों पत्र मेरे पास आए। उनमें से कुछ लोग तो मुझसे भी अधिक कष्ट उठा रहे थे। मुझे अपने आप से लज्जा आने लगी। वे वर्षों से रोगशया पर थे और उनके पत्र अत्यधिक मनमोहक थे। ये वे लोग थे जिन्होंने सच्ची जय पाई थी। हम सभाओ में चंगाई और जय पाने की बात सुनते हैं, परंतु यदि आप वास्तव में महान विजयों को देखना चाहते हैं तो अस्पतालों में जाएं, बिस्तरों में पड़े एकांतवासी भक्तों से आप बातें करें। आपका साहस जाता रहेगा, परंतु इनका साहस नहीं टूटता है। परमेश्वर उन्हें शक्ति देता रहता है। तीसरी बात हम देखते हैं, दुख को ताड़ना समझकर सहलो। यह एक खतरनाक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह सत्य के अति निकट है। यह ढोंग है, जैसे फकीर लोग कांटों पर लेटे रहते हैं। उसे वहां लेटने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह ऐसा करता है। कुछ लोग परमेश्वर के अनुशासन को बड़ी सहिष्णुता से सहन करते हैं। ओह, यह प्रभु की ओर से है, अतः मुझे सहना ही होगा। परमेश्वर आपसे सहिष्णुता नहीं चाहता है। जी हां, आपको उससे कारण जानना है। प्रभु, तूने यह क्यों दिया है? मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझे क्या सिखा रहा है। सहिष्णुता धारण न करें जबकि आप मन में कुड़कुड़ाते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का फल यानी कि प्रतिफल मिलता है। एक व्यक्ति अपना मोटापा घटाने के लिए प्रतिदिन दौड़ता था। क्या आप समस्याओं में व्यायाम करते हैं? जब आप कष्ट उठाते हैं, जब आपके मार्ग में बैरी आ जाएं, परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त ही कुछ कार्य करता है। हमें इन सब बातों का अभ्यस्त होना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे मित्रों, पौलुस का व्यायाम था, कसरत था कि वह शरीर की लालसाओं का शिकार न बने। वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर के समक्ष वह निकम्मा ठहरे। मेरे प्रियो, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अपना व्यायाम आरंभ कर दें। मेरे एक मित्र को जब कैंसर की बीमारी हुई, तब उसका पहला प्रश्न परमेश्वर से यह था, क्यों? उसे समझने में अधिक समय नहीं लगा कि उसका स्वर्गीय पिता उसकी ताड़ना कर रहा है। वह परमेश्वर का एक हठी पुत्र था, परंतु परमेश्वर के साथ उसने मेल कर लिया। उसने उसे रोग मुक्ति दिलाई और आज वह परमेश्वर की सेवा में है। इसके बाद शीघ्र ही वह फिर से रोगग्रस्त हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसे चित लेटना है और लगभग 3 सप्ताह चित लेटा रहा। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परमेश्वर की ताड़ना नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ सीधा हिसाब करना सीख लिया था। वह लगभग प्रतिदिन परमेश्वर के साथ लेखा सही कर लेता था। वह उसे निराश कर देता था क्योंकि वह अब भी हटीला है, परंतु वह उसके सम्मुख अपने पाप स्वीकार कर लेता है। उसे विश्वास है कि वह परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कई लोग हैं जो कष्ट में हैं, परंतु इस बात को नहीं समझ पाते कि वे परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। अतः मैंने उससे पूछा, हे प्रभु, तूने अब यह क्या कर दिया? वह तो रेडियो में सेवा का काम करना चाहता है। उसने उसे चित पटक कर कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं, तूने अभी बहुत सी बातें नहीं सीखी है, तू सोचता है कि तेरी रेडियो सेवा आवश्यक है और मैं तेरे बिना चल नहीं पाऊंगा। तुझसे पहले तेरे बिना कैसे चल रहा था? तू यहां लेटकर कुछ सीखेगा। मैं तेरा पिता हूं और तुझे मेरे लिए सहन करना सीखना होगा। तू विश्राम करना नहीं जानता है, तू मेरी बाट जोहना नहीं जानता है। तब उसने कुछ समय बाद कहा, ठीक है पिताजी, यदि आप चाहते हैं कि मुझे यहां लेटे रहना है तो मैं लेटा रहता हूं। मैं आपके द्वारा दिया गया सबक सीखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के अनुशासन की शिक्षा लेना आवश्यक है और तब हम अपने आप को निम्न पद में व्यक्त दशा में नहीं पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। यहां पर हम पाते हैं ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने वाले विश्वासी बनकर जीवन यात्रा ना करें। मेरे एक मित्र से मैंने जब भी पूछा कि वह कैसा है, उसने सदैव लगभग 15 मिनट तक मुझे बताया कि वह कैसा है, परंतु वह कभी अच्छी दशा में नहीं होता था। अतः मैंने उसके हाल चाल पूछना ही छोड़ दिया। वह सदा ही निराश सा घूमता रहता था। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई आपको देख रहा है? आप परमेश्वर की अनुमति से आने वाले कष्ट को कैसे सह रहे हैं? क्या आप उसे उसके अनुशासन में सहन कर रहे हैं? क्या आप कहते हैं मेरा स्वर्गीय पिता मेरी ताड़ना कर रहा है, जिसमें उसका उद्देश्य निहित है और मैं उससे शिक्षा लेना चाहता हूँ? हमें अपना व्यायाम कसरत आरंभ कर देना है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों यह कष्ट उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, हो सकता है कि आज आप भी किसी प्रकार की परेशानियों में हैं, कष्ट में हैं, दुविधा में हैं। आज आप भी प्रभु के पास आएं और उससे पूछें, हे प्रभु, यह कष्ट मैं क्यों उठा रहा हूँ, मैं क्यों उठा रही हूँ, मेरा परिवार आज दुखित क्यों है। जब आप उसके अनुशासन को समझ जाएंगे तो निश्चय ही आप भी अपने जीवन में आनंद को महसूस करेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। मेरे मित्रों, मैं ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे लेखक की यह बात कभी समझ में नहीं आई, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। क्या हमें सीधे मार्ग पर चलना है कि निर्बल भक्त हमारे चरण चिन्हों पर चले, या हमें सीधे मार्ग पर चलना है कि हम जीवन में लंगड़ा कर चलने ना पाएं? अनेक विश्वासी हैं जो कुड़कुड़ाते हैं और आलोचना करते रहते हैं, वे गवाही के लिए कलंक हैं, परंतु देखने में वे अति धर्मी दिखाई देते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। साहस रखें और सबके साथ शांति का व्यवहार करें, अर्थात उनके साथ जो आपको शांति से जीने देते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि वे शांति से जी ही नहीं सकते हैं। सबके साथ शांति का व्यवहार करें, सब विश्वासियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जिएं। हमें अपने जीवन को एक लंबी दौड़ बनाना है जिसमें हम अनेकों के साथ मसीही दौड़ में भाग ले रहे हैं। लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मुझे पवित्रता उत्पन्न करना है तो मैं प्रयास त्याग दूंगा, क्योंकि मुझ में पवित्रता तो है ही नहीं, परंतु वह शांति जो मुझे प्राप्त है प्रभु यीशु के लहू से मिलती है। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है। यदि मुझ में कोई पवित्रता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वह मेरी धार्मिकता ठहरा है, वह मेरी धार्मिकता है। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं तो केवल इसलिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है। यह प्रोत्साहन की बात है मित्रों, इससे मुझे मसीही दौड़ के लिए निकलने की प्रेरणा मिलती है, भागने की प्रेरणा मिलती है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ध्यान से देखते रहो, इसमें दिशा निर्देश का विचार निहित है। यह दिशा क्या है? इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में लेखक कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो जाए। यहां वंचित का अर्थ धर्म त्याग नहीं है, इसका अर्थ है पिछड़ जाना। विश्वासी को मनुष्य की अपेक्षा प्रभु यीशु पर आंखें गड़ाए रहना है, अन्यथा वह परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास असीम भंडार है और वह अपनी संतान पर बहुतायत से अनुग्रह का वर्षा करना चाहता है। वह इसमें अति सक्षम एवं योग्य है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड चुकाया है और परमेश्वर दया और अनुग्रह का धनी है और वह हमें इसमें मालामाल कर देना चाहता है, भरपूर कर देना चाहता है। परंतु समस्या यह है कि हम अनुग्रह प्राप्ति से पीछे हट जाते हैं। हम यहां सत्य की चर्चा कर रहे हैं प्रियो, जिसे आप परमेश्वर के पास जाकर थाम सकते हैं। यही तो इसकी महिमा है और इस पत्री का संदेश है। क्या आप आज उसके पास गए हैं? आपने श्रद्धापूर्वक तो उससे बात की होगी, परंतु क्या आपने उससे पिता रूप में बातें की हैं? उससे अपने बारे में सब कुछ बता दें, उससे कहें कि आपको अनुग्रह की आवश्यकता है। हम सबको अनुग्रह की आवश्यकता है और वह उसी में उपलब्ध है। हमें केवल मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो जाएं। लिखा है, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। एक विद्यती कलिसिया में कल्पना से परे समस्या खड़ी कर सकता है। मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमें परमेश्वर से अनुग्रह की याचना करना है कि हम अपने अगम परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर पाएं और हमारे मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट उत्पन्न न हो। जी हाँ, मसीही जीवन प्रेम का जीवन है, कड़वाहट का जीवन नहीं है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। लिखा है व्यभिचारी। व्यभिचारी से यहाँ अभिप्राय है आत्मिक अनाचार, परमेश्वर से हटकर दैहिक लालसाओं का संकट मंडराता रहता है। एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया था। उसे प्रभु यीशु का वंशज होना था और अब्राहम के परिवार का याजक होना था, परंतु उसने इसकी चिंता नहीं की और सांसारिक लालसाओं के वश में हुआ। वह आत्मिक बातों में रुचि नहीं रखता था, जैसा कि आज भी बहुत से परिवारों में, बहुत से विश्वासी कहे जाने लोगों के जीवन में होता है। आगे हम पढ़ते हैं, अधर्मी। अधर्मी का अर्थ यहाँ है ईश्वर विरोधी, अर्थात एसाव को ईश्वर से कोई लगाव नहीं था। उसे परमेश्वर से संबंध बनाने में कोई भी रुचि नहीं थी। वह परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व संभालना नहीं चाहता था। उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार का महत्व न जानते हुए एक कटोरे दाल में उसे बेच दिया। इसी प्रकार अनेकों ने अपनी आत्मा अर्थात विवेक बेच दिए हैं। कुछ ने शराब के लिए, कुछ ने यौनाचार के लिए, और किसी ने नशीले पदार्थों के लिए, और किसी ने भ्रष्टाचार के लिए। अतः परमेश्वर की संतान के लिए संकट यह है कि वह परमेश्वर से हटकर दैहिक लालसाओं में लिप्त हो जाता है। हम या तो प्रभु यीशु के संबंधों में आगे बढ़ेंगे या पिछड़ जाएंगे। हम एक ही स्थान में रुके नहीं रहेंगे। आज बहुतों का जीवन ऐसा ही है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 17 पद में आगे लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। धर्मशास्त्र के कुछ अंश गलत समझे जाते हैं, जैसे यह पद। इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि एसाव पश्चाताप करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे अवसर नहीं दिया। परंतु लेखक का अभिप्राय कुछ और है। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तो बेच दिया, परंतु बाद में उसे पता चला कि उस अधिकार के साथ उसका उत्तराधिकार भी था। उसे अपने भाई से दोगुना अधिक मिलना था। कहने का अर्थ यह है कि एसाव केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही देख पाता था। वह उस चोर के समान था जो पकड़े जाने पर पछता रहा था। वह इसलिए नहीं पछताया कि वह चोर था और उसने चोरी की, उसे दुख इस बात का था कि वह पकड़ा गया। इसी प्रकार एसाव भी परमेश्वर की ओर फिरने और आत्मिक आशीषों के प्राप्त करने के लिए दुख नहीं मना रहा था, उसे दुख था कि वह सांसारिक संपत्ता से वंचित हो गया था। सच तो यह था कि वह परमेश्वर का विरोधी था। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। हो सकता है कि आपका जीवन एसाव का जीवन है, जो संसार की लालसाओं के प्रति पीछे पीछे भाग रहा है और आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, आप पिछड़ जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उसके हो जाएं। संसार की उस ओर आप न दौड़ें, परंतु प्रभु यीशु की ओर आप दौड़ें और जयवंत जीवन आप जिएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और अपने दौड़ और विश्वास और साहस की बातों को आपने सीखा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रख लूं छुपा। रोशन जगा।